भगवत गीता के समवेत गौर भक्त वृंद की विनिताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण पेज नंबर 1। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। तो कल हमने क्या चर्चा की थी, याद है किसी को? क्या क्या था? अच्छा, संदेश, उपदेश और आदेश, और प्रकृति के तीन गुणों के बारे में भी चर्चा की थी। कौन कौन से गुण हैं और क्या चर्चा की थी हमने? भगवत गीता, भगवत गीता का जो वितरण है उसके बारे में मेनली चर्चा की थी। तो भगवान का जो आदेश है, कल उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और उसका पिछला जो सत्र था, कल तो बीच में हमने एक एक्स्ट्रा सेशन ऐड किया था, तो लग रहा था कि आप सब लोग डरे हुए हैं। हाँ, कल क्या हुए थे सब लोग? हाँ, डर गए थे। तो हमें कष्ट होता है जब भगवत गीता को हम सोचते हैं, हाँ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बारी आती है तो हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भगवान हमसे ये आशा करते हैं। तो इससे पहले जो हम कंटिन्यू कर रहे थे कि भगवत गीता में जो 5 विषय हैं जिन पर कृष्ण चर्चा करते हैं, भगवान, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो भगवान इन 5 विषयों पर भगवत गीता में बहुत ही विशद रूप से, डिटेल रूप से चर्चा करते हैं। और अंतिम सत्र में हमने सुना था प्रकृति के, जो प्रकृति के बारे में भी सुना था हमने, भगवान की 2 प्रकृतियां हैं। कौन कौन सी हैं? अंतरंगा और बहिरंगा है, 3 शक्तियां, 1 तटस्था शक्ति के रूप में जीव है। तो आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे काल के बारे में और कर्म के बारे में और योगा के बारे में। तो हमारे पास समय कम है, तो हम प्रयास करते कि तीनों जो विषय हैं, हाँ, हमारे समय तक पूर्ण हो। तो भगवान कहते हैं कारणम गुण संघर्ष सद असत योनि जन्मसु। कि इस संसार में जीव को बांधने के लिए और नया शरीर प्राप्त करने के लिए कौन कारण है, ये जो प्रकृति के तीन गुण है। इसलिए कृष्ण कहते कई बार व्यक्ति अपने आप को कर्ता या कंट्रोलर घोषित करता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। वास्तव में इन तीन गुणों के द्वारा ही ये कार्य हमसे करवाए जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या सोचते हैं, मैं करता हूं। जब ये मैं का भाव आता है व्यक्ति के अंदर तो उसका पतन होना शुरू हो जाता है। तो इस संसार में ये जो भाव है वो हमें बांधता है, मैं और मेरा की जो भावना है, और वो हमें इस संसार में अलग अलग शरीरों में गिराता है। और जैसे इस संसार में देखो हर कोई व्यक्ति कुछ छोटा सा कार्य करता है तो वो ये स्थापित करना चाहता है कि मैंने किया, मेरा नाम आगे होना चाहिए, मैं कंट्रोलर हूँ अहंकार के कारण। ऐसे एक उदाहरण आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, वो कहते हैं कि एक जलाशय था पानी का पौंड, उस जलाशय के अंदर एक कछुआ रहता था, और धीरे धीरे जब गर्मी के दिन आए तो कई सारे मछुआरे मछलियां पकड़ने जाते थे और पानी खत्म होने जा रहा था और कछुआ भी मरने वाला था उसमें। तो वहां पानी पीने के लिए बगुले आया करते थे, बड़े बड़े पंछी एक प्रकार से, और इसने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो, जल खत्म हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कैसे ले जाए आप अकेले, तो आपको अकेला कोई पंछी नहीं उठा सकता आपको। तो ये बगुलों ने क्या किया, एक योजना बनाए कि आपको हम दोनों मिलके ले जाते हैं। तो कछुए ने कहा अच्छा है, एक क्या करो, एक डंडा ले लो छोटा सा, दोनों आप दोनों ओर से मुंह में पकड़ो और बीच में मैं अपने हाथों से या मुंह से क्या करूंगा उसको पकड़ूंगा और आप हमें लेके चलो यहाँ से। तो ऐसे ही किया बगुलों ने, तो एक छोटा सा डंडा लाया लकड़ी का, इन दोनों ने साइड से पकड़ा और कछुए ने उसको बीच में मुंह में पकड़कर या हाथ जैसे भी पकड़ा होगा उसने। तो ये इनका ये जो उड़ान इन्होंने ले ली बगुलों ने, तो अलग अलग गांवों के ऊपर से जा रहा था इनका, ये क्या कह सकते हैं इसको, फ्लाइट, इनका विमान जा रहा था। तो सारे गांव के लोग कहते थे क्या आश्चर्य है, किसकी बुद्धि है, क्या अमेजिंग योजना है। अभी सारे लोग प्रशंसा कर रहे थे और सब कह रहे थे कि किसकी इतनी अच्छी बुद्धि है। तब ये कछुए से रहा नहीं गया, उसने क्या कहा, अपने दोनों हाथ पकड़ के रखे थे, उसने खोल के कहा मैंने किया, मैंने ऐसे किया, तो वैसे गिर के मर जाता है नीचे। तो कृष्ण कहते गीता के तीसरे अध्याय में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, अहंकार के कारण जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वो अपने आप को कर्ता स्वीकार करता या कर्ता मानता है। वास्तव में करने वाले ये जो प्रकृति के गुण है जो हमसे एक प्रकार से फोर्सफुली करवाते हैं। इसलिए ये जो प्रकृति के गुण है इनमें व्यक्ति को रजो और तमो गुण में, पेज नंबर 130 में वो श्लोक है, 27वां श्लोक तीसरे अध्याय का, प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ये जो तीन गुण है इसमें हमें ज्यादा लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए। मतलब तमोगुण तो सबसे नीच है, आलस, निद्रा, प्रमाद, तमोगुण ये एक मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन अधिकतर अभी जो जीव है वो रजोगुण और तमोगुण में है, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है, सत्वगुण में नहीं है। तो जो ब्राह्मण होता है वो सत्वगुण में होता है, सत्वगुण के कार्यकलाप है, बहुत सुबह जल्दी उठना, भगवान के भजन करना और हर फिक्स समय में फिक्स कार्य करना, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो सत्व गुण में जो व्यक्ति होता है वो अधिक चंचल नहीं होता। नीट एंड क्लीन रहना, उचित फूड खाना, समय पर अर्ली बहुत लेट नाइट जगना, ये तमोगुण का एक लक्षण है। तो इस प्रकार से ये रजो सत्व और तमोगुण हमें बांधते हैं, लेकिन हमें सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। सत्वगुण में आते हैं तो भगवत भक्ति हमें सरल महसूस होती है। हरि नाम करना, सेवा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये सब क्या महसूस होता है? इजी महसूस होता है। लेकिन जो व्यक्ति रजोगुणी बुद्धि का है, तमोगुण है, उसके लिए बहुत कठिन होता है। तमोगुणी व्यक्ति गीता उठाते ही उसको नींद आना शुरू हो जाती है। जैसे व्यक्ति ने पूछा, प्रभु जी नींद नहीं आती, क्या करूं? हमने कहा, आप शाम को सोने से पहले गीता उठा के खोलो, बस ऐसे खोलो, शुरुआत करने का प्रयास करो, अपने आप नींद आएगी। देखा है कई लोग खोलते ही खराटे मारना शुरू करते हैं। तो ये तमोगुण का लक्षण है। तो ये गुणों से ऊपर उठने के लिए भगवत भक्ति भगवान कहते अव्यभिचारिणी। तो इसलिए भगवान चाहते कि कम से कम सत्वगुण में आ जाए। सत्वगुण मीन्स एयरपोर्ट है। सत्वगुण में आना मीन्स क्या? एयरपोर्ट में आना। एयरपोर्ट में आप फ्लाइट पकड़ के कहाँ जाते हो? दूसरे देश में जाते हो। तो उसी प्रकार से है, सत्वगुण में आना मीन्स एयरपोर्ट में पहुंचना, ताकि आप शुद्ध सत्व या वैकुंठ जाने की तैयारी कर सकते हो। तो ये तीनों गुण बांधते हैं। तो फिर हमें सोचना होगा कि मुझे कौन से गुण में रहना है। ये तीनों गुणों के तीन भाई उदाहरण है। लंका में तीन भाई थे ना, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण। तो हमें सोचना है कौन से भाई को मुझे फॉलो करना है। तमोगुण का लक्षण थे कुंभकर्ण, और जो रजोगुणी था, रजोगुण में काम, चंचलता, लालच, ये सब बहुत प्रगाढ़ भरा रहता है, कौन थे? रावण। तो अधिकतर अभी लोग रावण और कुंभकर्ण के जाति के हैं, है ना, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके शिष्य हैं। लेकिन विभीषण बहुत कम है। हमें किसके अनुयायी बनना है? विभीषण के। ऐसे वातावरण में होकर भी कई बार व्यक्ति कहता है कि मेरे घर का वातावरण सुटेबल नहीं है। वो विभीषण का वातावरण सुटेबल था उनके लिए, लेकिन बहुत फिक्स थे, फिर भी वो भगवान राम का भजन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो ऐसे तीनों गुणों से ऊपर उठना, उठने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि ये जो तीन गुणों से ये जगत भरा हुआ है, उनसे ऊपर उठेंगे हम, जो इन तीन गुणों से ऊपर उठा है उनका एसोसिएशन करके। तो भगवान और उनके भक्त इन तीन गुणों में नहीं है, उन पर उनका प्रभाव एक प्रकार से नहीं है। तो इसी कारण से गीता में कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं हमेशा कि उठो इन तीन गुणों से। फिर तीनों गुणों के बारे में आप भगवद गीता पढ़िए, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप आएंगे तो तीन गुणों में जो यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अलग अलग गुणों में, वो सब भगवान ने 17वें अध्याय में दिया है और 14वें अध्याय में भी। तो इस प्रकार से ये जो तीन गुण है, इन तीन गुणों की तुलना इससे की गई है, चैन से की गई है। एक चैन, जैसे आपका पांव बांध के रखते हैं ना, जैसे हाथी का पांव को बांध के रखते हैं, तो वैसे ये तीन गुण की चैन हमें संसार में बांध के रखती है। सतोगुण भी बंधन है। सतोगुण की चैन गोल्डन चैन हो सकती है, रजोगुण चांदी की चैन, और तमोगुण लोहे की चैन। तो मतलब चैन चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आप क्या हो? बंधन में हो। तो इसी कारण से इस बंधन से जो निकलना चाहता है व्यक्ति, वो बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान व्यक्ति, इसलिए मनुष्य जीवन कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए। हमने तो पशु के भांति हम जीवन यापन कर रहे हैं, तो कैसे यूटिलाइज करो? इतना अमेजिंग लाइफ मिला है, सुंदर जीवन है, लेकिन जीने की कला आनी चाहिए, वो गीता में कृष्ण देते हैं। सोचो कोई भिखारी है, उसको 2,00,000 रुपए मिलते हैं, और वो जाके क्या करता है? खर्च करता है, एक कटोरा, सोने का कटोरा खरीदता है और भीख मांगने लगता है। हमारी स्थिति वैसी है, मनुष्य जीवन मिला है, हम वो भिखारी के भांति हैं, पशु के जो कार्यकलाप है उसी में लगे पड़े हैं दिन रात। कभी उठने का भी विचार करना चाहिए। जैसे आंदोलन होता है ना, सबसे पहले हम अपने आप को, कोई हमें बदल सकता है तो सबसे पहले कौन बदल सकता है? हम ही हमें अपने आप को पुश करना होगा, तो फिर हमें भक्तों की या भगवान की सहायता मिल सकती है। तो इस प्रकार से भगवान प्रकृति आदि का वर्णन करते हैं और ये जो तीन गुण हैं इनका भी वर्णन करते हैं। तो भगवान कहते हैं अगला जो तत्व है काल, किसके बारे में वर्णन करते गीता में, काल टाइम। अभी काल से तो सब कोई डरता है, अकाल आता है तो डरता है, तो साक्षात काल का कॉल आ जाए तो कितने डरते हैं हम। काल कहते ना उसका काल आ ही गया था, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि मेरा भी काल आने वाला है। तो कौन ये काल कौन है? भगवान गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 376, श्लोक नंबर 32, कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधः। श्री भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ। कौन है काल? कृष्ण। इसलिए वो पहले शब्द में कहते हैं कालो अस्मि, मैं काल हूँ, भगवान कहते हैं। तो इसलिए है महाभारत के युद्ध में भगवान काल के रूप में प्रकट हो गए थे। लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, तो कई बार भगवान कहते कोई व्यक्ति सरलता से मेरी शरण नहीं ग्रहण करता, मैं भी उसके पास जाकर उसको दर्शन देता हूँ, मिलता हूँ उससे। कौन से रूप में? काल के रूप में मिलता हूँ। तो हमें सोचना है भगवान का सुंदर श्याम सुंदर बांसुरी ले हुआ रूप हमें चूज करना है, या फिर भगवान का बयावर रूप काल चूज करना है, यह हमारे ऊपर है। हाँ, तो दोनों में से एक हमें चूज करना ही पड़ेगा। तो काल इस जगत में है, भौतिक जगत में काल है, आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। आध्यात्मिक जगत में काल होता भी है तो, लेकिन वो प्रभाव नहीं डालता, भगवान की जो लीलाएं हैं उसमें सहायता करता है। जैसे वहां भी दिन होता है, रात्रि होती है ना, भगवान वृंदावन में ब्रज में सुबह उठ के गवे चराने जाते हैं, तो वहां काल का प्रभाव नहीं है, लेकिन वो काल महसूस होता है लीलाओं में सहायता करने के लिए। और काल का मेन काम क्या है? परिवर्तन लाना, चेंज। ये शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, स्थिर हो जाता है, बच्चे पैदा करता है, और फिर नीचे क्षय होने लगता है और फाइनली मर जाता है। तो इस प्रकार से हर वस्तु में परिवर्तन जो लाता है वो वास्तव में काल है। इसलिए काल को हम देखते हैं भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में हम अनुभव करते हैं। इस कारण से कृष्ण कहते हैं कि ये काल के प्रभाव से कोई व्यक्ति बचा नहीं है और आगे भी नहीं बचने वाला। बड़े बड़े राजा महाराजे धनी मानी लोग होके चले गए, काल के प्रभाव में सब विलीन हो गए, बड़ा बड़ा साम्राज्य भी नष्ट हो गया, इतना सारा ऐश्वर्य आदि होने के बावजूद भी। तो काल सारे वस्तुओं का विनाश करने के लिए है। तो ये काल को एक प्रकार से चार भागों में बांटा है। ये जो चार युग है वो क्या है? काल का ही एक, काल मीन्स टाइम, उसका एक श्रृंखला है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये काल के प्रभाव में हर कोई व्यक्ति विनष्ट होता है। इवन ब्रह्मा जिसकी सबसे बड़ी आयु है, इस जगत में किसी जीव की सबसे बड़ी लंबी आयु किसी की है तो वो ब्रह्मा की है। गीता में कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में, पेज नंबर 284, सहस्र युग पर्यंतम हरियत ब्रह्मनो विदो रात्रियुग सहस्रांतम तेहोरात्र विदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो इसका तात्पर्य श्लोक का पढ़ सकते हैं बाद में, इसमें सारा ब्रह्मा का डिटेल दिया है। तो ब्रह्मा की आयु कितनी है? ये जो चार युग है, ये चार युग मिलते हैं तो ये दिव्य युग कहा जाता है, और ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही हजार चतुर्युग से ब्रह्मा की एक रात्रि, अब सोचो कलयुग की आयु 4,32,000 है, हा? तो उससे दुगना त्रेता, द्वापार फिर त्रेता और क्या है सत्ययुग है। तो इतना विशाल अवधि है ब्रह्मा के जीवन की, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की आयु भगवान के सामने कितनी है, जो महाविष्णु है जब सांस बाहर निकालते तो ब्रह्मा का जन्म होता है, सांस अंदर लेते तो ब्रह्मा मर जाते हैं। अब सोचो इतना आयु होने के बावजूद भी भगवान के एक सांस के बराबर ब्रह्मा की आयु है। अब देखो रात बारिश के दिनों में वो जब लाइट चलती है तो कई सारे कीड़े वहां इकट्ठा होते हैं, तो उसी समय जन्म लेते हैं। सुबह हम उठते तो सारे मरे हुए हैं, उनका पूरा फैमिली जन्म लेता है, सब कुछ खत्म होके मर जाते हैं। मॉस्किटो सुबह जन्म लेता है, कुछ घंटे का जीवन है उसका, और संध्या समय तक एक मॉस्किटो मर जाता है, उसी में जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है, ऑफिस जाता है, स्कूल जाता है, और फिर फाइनली बूढ़ा होके शरीर छोड़ता है, हॉस्पिटल में नहीं वैसे ही। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काल सब लोगों की आयु को हर लेता है। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कि आयुष्य में ये जो एक एक क्षण है वो इतना मूल्यवान है कि आप करोड़ों करोड़ों रुपए दोगे तो भी अपने जीवन का बीता हुआ एक क्षण वापस नहीं ला सकते, तो हमें कितना सावधान होना चाहिए। इसलिए भक्त का एक लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम, जो उन्नति करता है भक्ति में उसके अंदर एक गुण आता है, क्या गुण, क्यों अपना थोड़ा सा समय भी गवाता नहीं है, हमेशा कृष्ण के संबंधित कार्यों में लगा रहता है, क्योंकि उसको पता है एक एक क्षण कितना मूल्यवान है। आप चाहे करोड़ों रुपए आपके पास हो जो बीता हुआ कल है या घंटा है, करोड़ों रुपए देकर भी आप वापस नहीं ला सकते, इसलिए एक एक सांस हमारे लिए मूल्यवान है, एक एक सांस। अब देखो उसका मूल्य कब पता चलता है, जब हॉस्पिटल में अपोलो में किसी को वेंटिलेशन इसके ऊपर रखा जाता है, वेंटिलेटर पर, है ना, एक एक घंटे का आपको कितने का हजारों रुपए पे करने पड़ते हैं। तो अभी इतनी अच्छी खासी सांस चल रही है तब हमें भगवत भक्ति हम नहीं करेंगे, हरे नाम का उच्चारण नहीं करेंगे। जब बुढ़ापा आता है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि हमें हमारे लक्ष्य के ओर हमेशा कोई ना कोई मार्गदर्शन करता है। जब हम बच्चे होते तो माता पिता कहते तुम्हें ना बड़ा बनना है, थोड़ा बड़ा हो जाते तो तुम्हें ये अपना करियर सेटल करना है, ये अचीव करना है। लेकिन एक एक समय आता है लाइफ में तब जब हम स्टॉप हो जाते हैं, फिर हमारा बुद्धि भ्रमित रहता है और हमें कुछ पता नहीं होता अभी आगे करना क्या है, कौन सी आयु, वृद्धावस्था, क्योंकि मृत्यु के इतने नजदीक होते हैं, फिर अभी पता नहीं रहता कि आगे करना क्या है मुझे, हाँ, क्योंकि तब कोई गाइड करने वाला नहीं है। इसलिए भगवत गीता वो गाइड बुक है, पूरे जीवन में हमें कोई ना कोई गाइड करता है भौतिक रूप से, लेकिन मृत्यु के सामने हम खड़े होते हैं वृद्धावस्था में, जब आंखों में मोतियाबिंद है, दांतों की संख्या खत्म हो गई है और सारी झुर्रियां पड़ी हुई है बॉडी में, और स्किन ऐसी खुल गई है और जितने भी जॉइंट्स हैं वो आपस में करताल ध्वनि कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं, तो वो समय है हम सोचते हैं कि अभी ना भक्ति वगैरह कुछ होता है शायद संसार में, ना भगवान नाम की कोई चीज है, हाँ धाम आदि है, चलो सोचते हैं, तो समय क्या होता है, वो समय निकल गया होता है। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है उसको अच्छे से समझना चाहिए और पहले से ही हमें तैयार होना चाहिए एक एक क्षण के लिए। इसी कारण से भगवान और उनके भक्तों के ऊपर काल का और गुण का प्रभाव नहीं होता, इसलिए उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, जैसे हमने उस दिन कहा था। तो भगवान आगे वर्णन करते हैं कर्म के बारे में। तो हमने चर्चा की थी कि ये जो चार चीजें हैं वो शाश्वत है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये चार चीजें शाश्वत है, लेकिन कर्म क्या है, शाश्वत नहीं है। तो भगवान इसी कारण से कहते हैं नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म करने की कोई इच्छा नहीं है इस जगत में, और ये जो कर्म का प्रभाव है वो मेरे ऊपर पड़ता नहीं है, भगवान उससे परे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आपने अचिंत्य शक्तियों से भरे हुए हैं। इसलिए भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है? अनोर अनियात महतो महियात। भगवान सब छोटे से छोटे हैं और सबसे बड़े से बड़े हैं। इसलिए भगवान को अनु भी कहा जाता है कि उनसे छोटा कोई नहीं हो सकता और उनसे बड़ा भी नहीं हो सकता। उस दिन हमने वो श्लोक देखा था, मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, हे धनंजय मुझसे कोई श्रेष्ठ नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान अनोर अनियात महतो महियात है, वो अपने अचिंत्य शक्ति के प्रभाव में है। इसी कारण से माता यशोदा उनको बांध भी रही थी तो भी बंधन में नहीं आ रहे थे। माता यशोदा देख रहे थे, अरे इसी बच्चे के कमर में मैंने काला धागा बांध के रखा था, काला धागा दिख रहा है, जैसे बच्चे को बांधते ना काला धागा माता है, लेकिन अभी रस्सी बांध रही हो तो बंध नहीं रही है, साइज वही है। तो ये अचिंत्य शक्ति है जो यशोदा माता समझ नहीं पा रही थी। इसलिए भगवान और ये भौतिक जो लॉज हैं वो आपस में नहीं मिल सकते, मतलब भगवान के ऊपर वो लागू नहीं हो सकते। जैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ये भौतिक प्रकृति के जो नियम है, गुण है, काल का प्रभाव है, वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। इसी कारण से ये जो कर्म है वो केवल जीव के लिए है या जीवात्माओं के लिए। जो मनुष्य है ये वास्तव में इस कर्म बंधन से सदैव बद्ध रहता है। इसी कारण से कृष्ण कहते हैं कि ये जो कर्म की सहायता से ही हम क्या करते हैं, एक शरीर धारण करते हैं और शरीर की सहायता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो कर्म शाश्वत क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म हमारे द्वारा बनाया गया है, हमारी इच्छा की उत्पत्ति के कारण ये कर्म बना हुआ है। मतलब वास्तव में कर्म के लिए हम कारणीभूत हैं, अपने आप को बंधन में डालने के लिए। तो ऐसा एक भी जीव नहीं है जो कर्म किए बिना, कार्य किए बिना रह सकता है। इसलिए कृष्ण तीसरे अध्याय के पांचवे श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 114 में, पेज नंबर 114, नहि कच्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। गीता में कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति बद्ध है कर्मों को या कार्यों को करने के लिए। तो लोग सोचते हैं जनरली कर्म, लोगों को लगता है कि दो प्रकार के कर्म हैं, पाप कर्म पुण्य कर्म। हाँ, व्यक्ति सोचता है पाप कर्मों को विनष्ट करने के लिए मुझे पुण्य कर्म करने चाहिए तो पाप कर्म विनष्ट होंगे, लेकिन नहीं, ये दोनों कर्मों का अस्तित्व हमेशा के लिए अलग अलग रहता है। एक कर्म से दूसरे कर्म को हम काट नहीं सकते। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि ये जो कर्म की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, ये बड़ा ही गहन है। गहनो कर्म ना गति, गीता में कहते हैं कि इसको समझना होगा। जनरली इंडियंस या भारतीयों को ये पता रहता है, कर्म की बात आती है या गीता की बात आती है तो एक ही श्लोक आता है उनको, कौन सा? कर्मण्येवाधि तारस्ते, आगे की लाइन नहीं आती, उसके आगे की वाली नहीं आती लोगों को, तो एक लाइन फिक्स है। शायद उनके पिता से सुना होगा, हाँ, या ऑफिस की कलीग से सुना होगा। तो वो कर्मण्येवाधि कारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, श्लोक निकाल सकते हैं, 2.47 पेज नंबर 92। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचनः, मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मतलब हमारी स्थिति उस किसान के समान है जो बीज बो सकता है लेकिन उस वो फल वो प्राप्त नहीं कर सकता, उसके अधिकार में नहीं है। फल देने वाला क्या है? कोई और है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि कर्म करने का तुम्हें अधिकार है लेकिन तुम फल के अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि वास्तव में कर्म क्या है और ये कर्मों को किससे समझना चाहिए। कृष्ण चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, पेज नंबर 162 में, कि हमें किससे ये कर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। कृष्ण कहते किम कर्म किम कर्मेति कवयो पित्र मोहिता तत्य कर्म प्रवक्षामि यज्ञत्वा मोक्षे शुभात्। श्लोक नंबर 16 162, कर्म क्या है और अकर्म क्या है इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं ये कर्म क्या है इसकी शिक्षा कौन दूंगा, मैं दूंगा। तो कर्म के बारे में हमें भगवान से समझना होगा। तो भगवान 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते कि ये कर्म है क्या, 273 पेज नंबर। श्री भगवान उवाच, श्लोक नंबर 3 8वें अध्याय का 273, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावाध्यात्मम उच्यते भूत भावत भवकरो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने क्या अविनाशी और दिव्य जो ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। अभी ये लाइन, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो जीवों के जो कार्यकलाप है उनके शरीर से संबंधित, ये वास्तव में क्या है, कर्म है। तो ऐसे कर्मों को समझना ये एक प्रकार से अत्यधिक कठिन है। हाँ, जनरली जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार के कर्मों का ज्ञान व्यक्तियों को होता है, पाप और पुण्य। तो कितने प्रकार के कर्म हैं जिसका वर्णन कृष्ण चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में करते हैं, पेज नंबर 163 में। तो आपको पेज नंबर जल्दी जल्दी निकालना है ताकि हमारे पास समय का भी अभाव है, हम सब काल के प्रभाव में हैं। 17वां श्लोक, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मनागति। कर्म की बारीकाइयों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीन प्रकार के कर्म है, कर्म जिसे सकाम कर्म भी कहते हैं और विकर्म, और तीसरा क्या है, अकर्म है। तो ये जो कर्म है एक प्रकार से गुणों पर आधारित है, गुण कर्म विभागशा। ये जो वर्णाश्रम धर्म को भगवान ने अलग अलग बांटा है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये उनके गुण और उनके कर्मों के आधार पर। तो हमें समझना चाहिए कि ये कर्म क्या है। तो पहला है सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है कि इस भाव से वो व्यक्ति कर्म करता है कि इसमें मेरा क्या लाभ होगा, ये सोचकर कार्य करता है, वो क्या है, सकाम कर्म। इसमें काम शब्द है ना, सकाम, काम मीन्स कामना, कामना की वो आशा करता है, इसलिए वो कार्य करता है जिसके कारण उसे सकाम कर्म कहते हैं। इसलिए भगवान इसी को दूसरे अध्याय में कहते हैं, पेज नंबर 89 में, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 42, दो श्लोक यहाँ भगवान कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपिच्छिता। उसका अनुवाद पढ़ता हूं मैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार का कर्म जो इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रेरित है, हम कुछ भी कार्य करते उसके पहले सोचते कि इससे मुझे क्या मिलेगा, काम कामना, इससे प्रेरित होकर कार्य करते हैं। और अधिकतर रूप में इसमें कर्म कांड इन्वॉल्व है। लोग यज्ञ आदि करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, कोई सब अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसे इंद्र का पद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कई सारे जो कर्म कांड आदि है उसमें व्यक्ति इन्वॉल्व होता है और उसकी यही इच्छा होती है इसके बदले में मुझे ऐश्वर्य, धन, संपदा, सफलता इत्यादि इत्यादि प्राप्त हो। तो इसको कहते हैं सकाम कर्म, जिससे व्यक्ति वास्तव में बंधा रहता है। और दूसरा कर्म क्या है? विकर्म है। विकर्म का मतलब है कि शास्त्रों के विरहित जो कर्म है उसे विकर्म कहा गया है। भगवान कहते हैं तीसरा अध्याय के 32वें श्लोक में, पेज नंबर 134 में, इसका अनुवाद पढ़ता हूं, तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो विकर्म है कि शास्त्रों से विरहित विपरीत कर्म करना, अत्यधिक रूप से शास्त्रों के विपरीत जो कार्य है वो सारे क्या है? पाप कर्म है। तो ये विकर्म मीन्स एक प्रकार से पाप कर्मों को करना अत्यधिक रूप से। और जो अकर्म है, तीसरा कौन सा कर्म है? अकर्म। अकर्म करना कृष्ण के लिए कार्य करना। किसके लिए कार्य करना? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कार्य करना। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय में कृष्ण भावना भावित कार्य का वर्णन किया है। तो 5वां अध्याय कभी आप पढ़ सकते हैं। तो इसका वर्णन भगवान तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में करते हैं, पेज नंबर 133 में। एमे मतमिदं नित्यं मानो तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के आदेशानुसार कार्य करना ये वास्तव में क्या है? अकर्म है। और भगवान के आदेश क्या है? पेज नंबर 276 में कृष्ण कहते हैं, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान के आदेश है कि कर्म कैसे हमें करने चाहिए। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, मेरे पीछे बोलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यार्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो भगवान कहते तस्मा सर्वेशु कालेशु, ऐसे नहीं कि लिमिटेड काल के लिए कृष्ण कह रहे हैं, सारे समय क्या करो? माम अनुस्मरह, वो शब्द आप देखेंगे, मेरा स्मरण करो और क्या करो? युद्ध करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो ये वास्तव में अकर्म है। तो हम सब लोग कर्म बंधन में हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला ही है कर्म बंधन से निकलने के लिए। हाँ, प्रभुपाद बहुत सरल उदाहरण देते थे कि इन तीन कर्मों को कैसे हम समझ सकते हैं। कि जो एक कोई व्यक्ति होंडा सिटी कार में जा रहा है और सिग्नल में देखता है कि अभी ग्रीन लाइट है तो रुक जाता है, और ग्रीन लाइट है तो आगे निकल जाता है, रेड लाइट है तो रुक जाता है। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि अभी रेड लाइट है, तो वो देखता है पुलिस तो खड़ा नहीं है ना, हाँ तो कोई नहीं है, तो क्या करता है? तोड़ के चला जाता है। हम सब ये सेकंड कैटेगरी के हैं, तोड़ने वालों में से हैं। और फिर तीसरा व्यक्ति आता है, हाँ वहां पुलिस भी होता है, रेड लाइट भी होती है, लेकिन वो निकल जाता है, पुलिस उसको क्या करता है? सैल्यूट मारता है, और उसके पीछे एक गाड़ी नहीं जाती, बहुत सारी गाड़ियां भी निकल के चली जाती हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कि जो पहला व्यक्ति है वो वास्तव में सकाम कर्मी है, और दूसरा जो तोड़ के जा रहा है वो कौन सा है? विकर्म है। और तीसरा कोई राष्ट्रपति आ रहा है तो उसके लिए कुछ रूल्स है? नहीं है, पुलिस भी उसको सैल्यूट मार के खड़ा रहता है। तो तीसरा व्यक्ति जाता है वो अकर्म है। तो कृष्ण के ऊपर कोई कर्म के नियम नहीं, और उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां भी जाती हैं, उनके ऊपर भी कोई नियम नहीं है। तो मीन्स भगवान की शरण या भगवान के प्रति जो कार्य किए जाते हैं, तो भगवान के पीछे बाकी उनके भक्त लोग भी इस बंधन से निकल जाते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं, सोल्जर का भी उदाहरण देते हैं अपने प्रवचनों में, सोल्जर जब वहां युद्ध स्थल में जो शत्रुओं को मारता है, उनके ऊपर फायरिंग करता है, तो उसको परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन अपने घर में आकर पड़ोस के ऊपर एक गोली मारे, वह हजारों गोली मार रहा है, तो उसको परमवीर चक्र है। लेकिन यह पड़ोसी को मारता है तो उसको जेल जाना पड़ता है। तो इनमें क्या अंतर है? वहां कौन सा कर्म था जब बैटल फील्ड में? अकर्म था। और यहाँ कौन सा है? विकर्म है। तो इस प्रकार से हमें भी परमवीर चक्र चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें अकर्म करना पड़ेगा, कृष्ण के लिए कार्य करना पड़ेगा। देखो, इन्होंने अर्जुन ने भी क्या किया? कृष्ण के लिए कार्य किए। हाँ, सरल है। अकर्म का मतलब है कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य करना। अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता हेतु युद्ध किया, हाँ, तो उनको परमवीर चक्र मिला। और क्या परमवीर चक्र है? हमेशा कृष्ण के साथ है और फ्रंट में है। कहाँ है? फ्रंट में है। तो वैसे परमवीर चक्र वो है कि हम हमेशा कृष्ण के संग में निवास कर सकते हैं। तो इसलिए कर्म बंधन ये सबसे भयानक बंधन है। जो व्यक्ति मुक्त है वही हमें इससे छुड़ा सकता है। इसलिए भगवान यहाँ गीता में कई स्थानों में ये प्रयास करते हैं इसका वर्णन करने का। तो हर एक व्यक्ति अपने कर्म के रिएक्शन से डरता रहता है, या तो वो अलग अलग स्टोन पहनेगा। मैंने तो कितने लोग देखे कि 10 अंगूठे हाथ में है, 10 15 20 गले में भी स्टोन, पांव में भी स्टोन। क्यों? डरा हुआ है। तो कर्म के रिएक्शन को आप नष्ट नहीं कर सकते इन सब चीजों से, एस्ट्रोलॉजी आदि से। केवल डिले कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डिले। लेकिन वो आपके जीवन में आना निश्चित है। इसलिए कई लोग शनि की दशा करने के लिए, कितने मुक्त होने के लिए कितने कितने उपाय नहीं करते। लेकिन भगवान कहते क्या करो अर्जुन? मेरी शरण में आओ। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजाम। ये कर्म के जो रिएक्शन है इसको भगवान कहते जला देता हूं मैं। क्या करता हूं? जला देता हूं। निर्दहति, दहति में जलाना, किंतु च भक्ति बाजाम। तो इसी कारण से जो जीव है इतने सारे उपाय करता है अपने जीवन में, लेकिन वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता है, ये वास्तव में उसकी क्या है? परम मूर्खता है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। जैसे सूर्य जितना दूर होता है हमसे, हाँ, उतना ही हमारी छाया शाडो लंबी होती है, होती कि नहीं? लेकिन जैसे सूर्य हमारे सर के ऊपर आता है तो छाया नहीं दिखती। तो उसी प्रकार से जितना हम कृष्ण के क्लोज होंगे, जितना भगवान के प्रति आसक्त होंगे, उतनी ही ये कर्म की जो छाया है उसका प्रभाव है हम पर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सूर्य को नजदीक रखना या सर के ऊपर रखने का मतलब है कि भगवान के प्रति हमारा जो शरणागति है या भगवान का जो भगवत भजन है उसको वास्तव में हमें स्वीकार करना। हाँ, इसलिए लोग कभी कभी सोचते हैं, क्योंकि ये कर्मा के जो रिएक्शन है वो अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। एक तो होता है, एक होता है इंस्टेंट कर्मा। इंस्टेंट कर्मा मतलब तुरंत कर्म के आपको क्या मिलेंगे? फल मिलेंगे। हाँ, सोचो अभी यहाँ कोई बैठा है, उसको जाकर मैं एक थप्पड़ मारो बिना किसी हेतु के, वो मुझे यहाँ क्या करेगा? दूसरे थप्पड़ मारेगा तुरंत ही। इसको कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। और प्रभुपाद कहते थे दूसरा कौन सा? एक है डिले है रिएक्शन। डिले मीन्स लंबे समय के बाद। अभी कोई कहेंगे कि प्रभु जी आप कहते हो कर्म के फल तो तुरंत मिलते हैं, अभी अभी तो मैं चांदनी चौक से आया हूँ गोलगप्पे खाकर, हाँ इतने सारे खाए हैं, देखो मेरा पेट इतना फूला हुआ है, हाँ कुछ रिएक्शन ही नहीं मिल रहा है। तो हमारे भक्त कह सकते हैं कि रात के 12 बजे का इंतजार करो, तब आपका पेट गुड़गुड़ करेगा तो आपको रिएक्शन पता चलेंगे, हाँ थोड़ा लंबा समय के बाद। तो हम जो कर्म करते हैं उसके रिएक्शन कुछ हमें तुरंत मिलते हैं या कुछ बाद में मिलते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो जिसको कहते हैं कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्मा मीन्स सामूहिक कर्मा। जैसे सुनामी आना, कुछ लोग जॉगिंग के लिए गए थे वहां समंदर के तट पर, कुछ लोग होटल्स में बैठे थे टेरेस के ऊपर, उनको क्या पता अभी क्या आने वाला है, सुनामी। सुनामी अगर सबको डुबा देती है, या अर्थक्वेक का आना, या फिर एक साथ कई लोग फ्लाइट में जाते हैं, लगभग उनके कर्मा एक जैसे होते हैं, और एक ही साथ क्या होते हैं, वो प्लेन क्रैश होकर मर जाते हैं। तो ये कर्मों के रिएक्शंस हमें मिलना निश्चित ही निश्चित है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा खासा करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही सारा सारी समस्याएं मुझे ही क्यों आती है। हाँ, देखो लोग कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ, तो ये वैसे ही है। हाँ, जैसे उदाहरण दिए जाते हैं बहुत सरल, किसान का। किसान अलग अलग सालों में जब राइस की खेती करता है, राइस को निकालता है और एक बड़ा सा बैरल होता है, उसमें उसको क्या करता है, 2013 का राइस नीचे, उसके ऊपर 14 का, फिर 15 और 16। तो वो यदि सोचे कि 2016 जब अभी सोचो चल रहा है, 2016 का राइस मैंने इतना अच्छा डाला है ऊपर, और सबसे पहले नीचे कौन सा डाला हुआ था उसने, हाँ 13 का, तो उसको नीचे एक होल होता है जिससे आप राइस निकाल सकते हो, तो उसको कौन सा राइस पहले मिलेगा, 13 का। तो हम भी सोचते हैं, आजकल तो मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, इधर पेड़ के नीचे आके कृष्ण कथा भी सुनता हूँ, थोड़ा बहुत दान भी देता हूँ, प्रसाद भी स्पॉन्सर करता हूँ, एक दो माला जप भी करता हूँ, महीने में एक पेज भगवत गीता भी पढ़ता हूँ, तो भी मेरे साथ ये सब परेशानियां क्यों आ रही है। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है, पहला जो हमने क्या करके रखा है, राइस स्टोर करके रखा है, वो अभी आपको मिल रहा है। तो इसलिए, लेकिन इन सबके रिएक्शंस को खत्म किया जा सकता है। भगवान कहते तीव्रे न भक्ति योगे न, तीव्रता से भगवत भक्ति करते हैं तो ये सारे जो प्रभाव है वो विनष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं। हाँ, कृष्ण हमें सिखाते भगवत गीता के माध्यम से। हाँ, कई बार लोग सोचते कि जीवन में अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्या होना चाहिए। एक बार एक डिवोटी कह रहे थे कि पार्लियामेंट के बाहर बहुत सारे पेड़ हैं, तो वो कहता है ये सारे पेड़ कौन है, क्योंकि गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, 8वें अध्याय के 6 श्लोक में 276, आठवें अध्याय का 6 श्लोक, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यान्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अभी जितने नेता लोग, उस भक्त ने कहा, पार्लियामेंट हाउस में रह के पहले वो धन खाते थे, अभी पेड़ बन के क्या खा रहे, दिल्ली का पोल्यूशन खा रहे हैं। या फिर एक डिवोटी हॉस्पिटल में गया तो उसने देखा हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे बंदर ही बंदर हैं, तो वो आके कहता है कि ये बंदर सारे पहले क्या थे, डॉक्टर्स थे। हाँ, भगवान कहते हैं मृत्यु के समय में जो जो आप स्मरण करोगे वो शरीर आपको मिलना निश्चित है। तो ऐसे नहीं कि बुढ़ापा आएगा तो थोड़ा सा भक्ति करता हूं तब हरि नाम का जप करता हूं, नहीं, उसकी तैयारी अभी से, अभ्यास है ना, तो कौनते अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और वो प्रैक्टिस अभी से करना चाहिए, तभी मृत्यु के समय में भगवान का जो स्मरण है हमारे लिए सरल हो सकता है। अन्यथा भगवत स्मरण बहुत कठिन है, क्योंकि ये कर्मा के जो माइन्यूट डिटेल है, बारकाइयां हैं, वो बहुत कठिन है समझना। अब सोचो, धृतराष्ट्र ने 100 पक्षियों को मारा था, जिसके कारण एक जन्म में, तो जिसके कारण उसके आंखों के सामने उसके कितने बालक मारे गए, 100। भीष्म ने शायद 100 जन्म या 50 जन्म पहले अपना एक सांप, जब वो रथ में जा रहे थे तो सांप को उठाकर कांटों के ऊपर फेंक दिया, सारे कांटे उसके अंदर घुस गए थे, उसी की रिएक्शन क्या मिली उन्हें, बानों की शैया के ऊपर सोना पड़ा। तो इस प्रकार से कर्मा के कारण ही हमारा ये शरीर हमें मिलता है। इसलिए देखो, सबका शरीर एक जैसा नहीं है, चेहरा एक जैसा है, नाम एक हो सकते हैं, लेकिन कई बार होते हैं कि जुड़वा भाई होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो हर एक कर्म के आधार पर हमारे पास धन आता है, कर्म के आधार पर हमारे पास सौंदर्य होता है, बल आदि होता है और हेल्थ आदि होती है। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें उचित कर्म करने के लिए सीखना चाहिए। तो फिर करे तो कैसे कर्म करने चाहिए हमें? भगवान गीता में कहते हैं पेज नंबर 162 में चौथे अध्याय का 15वां श्लोक, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल में समस्त महात्माओं ने मेरे दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो जो महान भक्तों ने किया है उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। इसलिए भागवतम भी कहता है महाजनो एन गतास पंता। महाजन जो महान आचार्य महात्मा गण है, जिस रास्ते में गए हैं उसी रास्ते में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए, उन्हीं का हमें अनुसरण करना चाहिए। तो भगवान पेज नंबर 94 में कहते हैं दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक कि हमें क्या करना चाहिए, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम्। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक पेज नंबर 94। भक्ति में संलग्न मनुष्य ही जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तो भक्ति में लगकर ही व्यक्ति ये दो कर्मों से क्या होता है, निवृत्त होता है। अच्छे कर्म भी नहीं करने हमें न बुरे करने हैं। हमें कौन से कर्म करने हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म। उसी से ही हम इस जगत से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कृष्ण पेज नंबर 94 में, उसी पेज में श्लोक नंबर 49 में कहते हैं, दुरेन हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरण मन्विच्छ कृपना फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो जो करने योग्य नहीं है, और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है, कंजूस है, मूर्ख व्यक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान हमें कहते हैं कि करना ही है तो कौन से कर्म करो, किसके लिए करो। तो भगवान पेज नंबर 116 में कहते हैं, तीसरे अध्याय का जो 9वां श्लोक है, हाँ वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से है। 116 में कृष्ण कहते हैं कि किसके लिए कर्म करने चाहिए हमें, यज्ञार्थात कर्म नोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः है कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यज्ञार्थात कर्म भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। तो इस कर्म के 5 कारण हैं जिसका वर्णन भगवान गीता में करते हैं पेज नंबर 527 में 18वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है। ये कर्म के 5 कारण हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। एक कर्म की पूर्ति होने के लिए ये 5 चीजों की आवश्यकता होती है। तो भगवान यहाँ परमात्मा के रूप में अनुमंता का कार्य करते, सैंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है उसे इन कर्मों से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। हाँ, जो भौतिक विशेष रूप से सकाम कर्म है और विकर्म है उनसे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो रजोगुण है वही हमें इन कर्म बंधन में अधिक से अधिक बांध के रखता है, अधिक से अधिक प्रेरित करता है। इसलिए अर्जुन भी कहता है कि हे कृष्ण, मुझे पता है कि पाप कर्म करना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, उसमें लग जाता हूँ। पेज नंबर 137 में अर्जुन का ये प्रश्न है जिसको पढ़ के हम समापन करते हैं। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक है, पेज नंबर 136। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है, न चाहते हुए भी। तो भगवान कहते हैं अगले श्लोक में, उसी में ही, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यनमिह वैरिनाम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। तो ये रजोगुण के द्वारा हम पापमय कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और इस संसार का सर्वभक्षी पापिक शत्रु है। तो इस प्रकार से भगवान हमें ये कर्मा का जो वर्णन है वो बताते हैं और वो गाइड करते हैं कि हमें कर्म करने चाहिए, तो वो किसके लिए करने चाहिए? कृष्ण के लिए करने चाहिए। और हमें ये जो सकाम कर्म हमें बांधता है और जो विकर्म है वो भी, तो इसलिए एक भक्त को ये जो कर्म का विज्ञान है वो भगवद गीता से समझना चाहिए गंभीरता से, और भगवान के प्रति हेतु, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने हेतु अपने कर्मों को करना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन भी अपने कार्यों से भाग रहा था, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, फाइट करो, क्योंकि कोई जीव बिना कार्य किए बिना एक क्षण के लिए नहीं रह सकता। इसी कारण से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम लड़ो, लेकिन उसका आर्ट क्या है? तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर युद्धेचन, जो हमने श्लोक पढ़ा था, मेरा स्मरण करते हुए इन कर्मों को करो, तो फिर आप इस कर्म बंधन से सदैव मुक्त रहोगे। तो ये कला भगवान भगवत गीता से हमें सिखाते हैं। हरे कृष्णा। तो हमें योग के बारे में भी चर्चा करनी थी, तो कल हमारा फाइनल सेशन होगा जिसमें हम कौन सा योग इम्पोर्टेंट है, ज्ञान योग, ध्यान योग, सकाम कर्म योग और भक्ति योग, इनका संक्षेप में चर्चा करते हुए भगवद गीता में कृष्ण क्या हमें प्रैक्टिकल वर्णन बताते हैं जीवन में लागू करने के लिए, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कल का हमारा ये जो गीता सत्र है उसका आखिरी सेशन है, तो आप ट्राई कीजिए और आइए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता के श्रील प्रभुपाद की। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप आज फाइनली लिख के दे सकते हैं, तो मैं कल सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।
हरे कृष्णा। तो सभी उत्साह से धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो काफी सारे प्रश्न आए हैं हमारे पास पर्ची पे लिख के।